दिन सोमवार तारीख 13 जुलाई। नमस्कार, भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। ईरान परमाणु समझौते पर वियना में जारी बातचीत अंतिम चरण में, लेकिन कहा जा रहा है कई बड़े मुद्दे अभी भी हैं सुलझने, तो आखिर किस मोड़ पर फंसी है वार्ता की गाड़ी?
ईरान के ऊपर कन्वेंशनल आर्म्स एम्बार्गो भी है। ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि जो सैंक्शंस लिफ्ट किए जाएंगे वो सैंक्शंस शुड आल्सो इंक्लूड आर्म्स एम्बार्गो।
सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जीत के बाद विंबलडन के मिक्स डबल्स में भी भारत की हिस्सेदारी, विजेता लिएंडर पेस।
Winning a title like that again for the second time in a Grand Slam without losing a set, that is really.
और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी परीक्षा घोटाले की उठ रही बात। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अनुराग शर्मा से। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आज किसी समझौते का ऐलान हो सकता है। ऑस्ट्रिया के वियना में ईरान और 6 बड़ी ताकतों के प्रतिनिधियों की बातचीत जारी है। जिन मुद्दों पर विवाद है उनमें हथियारों की खरीद फरोख्त, सेंट्रीफ्यूज और सैन्य ठिकानों का निरीक्षण शामिल है। पश्चिमी देशों का आरोप रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। यूरोजोन के नेता ग्रीस के कर्ज संकट को लेकर अब भी बातचीत कर रहे हैं। कोशिश है ऐसे समझौते पर पहुंचने की जिससे ग्रीस यूरो को अपनी मुद्रा रख सके और उसके पास पैसा खत्म ना हो। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सी सिप्रास ग्रीस के बैंकों के अगले कुछ दिनों में ध्वस्त होने से पहले ही समझौता चाहते हैं। बातचीत शुरू होने से पहले सिप्रास ने कहा, मैं यहाँ हूँ किसी समझौते के लिए तैयार। यूरोप के लोग एकजुट यूरोप चाहते हैं, बटा हुआ नहीं। सभी पक्ष चाहें तो हम किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। अलेक्सी सिप्रास के शब्द। खबरों के मुताबिक यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने आर्थिक सुधारों की बड़ी लंबी लिस्ट तैयार की है। वो चाहते हैं कि इन सुधारों को ग्रीस की संसद पास करे। इराक की राजधानी बगदाद में हुए 2 कार बम धमाकों और 1 आत्मघाती हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। धमाकों में 80 लोग जख्मी हुए हैं। अभी तक किसी संगठन ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। सबसे खतरनाक हमला उत्तरी बगदाद के शाब इलाके में हुआ, जहां 1 आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि खोस्त प्रांत में हुए आत्मघाती कार बम हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। ये हमला एक अमरीकी सैन्य ठिकाने के नज़दीक हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर ने एक चौकी पर कार में विस्फोट कर दिया। इस जगह पर कई आम लोगों के वाहन रुके हुए थे। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। नेटो ने कहा है कि विस्फोट में गठबंधन सेना का कोई सैनिक नहीं मारा गया है। कल कपिसा और कुंडूज प्रांतों में हुए 2 बम धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसराइल में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक इसराइली अधिकारी को एक फलिस्तीनी लड़के की हत्या करते दिखाया गया है। यह लड़का इस अधिकारी की कार पर पत्थर फेंककर भाग रहा था। यह वीडियो मानवाधिकार संगठन बीटी सलेम ने जारी किया है। इससे पहले सेना ने दावा किया था कि ब्रिगेड कमांडर कर्नल इसराइल शोमेर ने गोली इसलिए चलाई थी क्योंकि उनकी जान खतरे में थी और उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। इसराइली सेना ने वीडियो पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। नासा के इंजीनियरों ने बीबीसी को बताया है कि होराइजन अंतरिक्षयान मंगलवार को प्लूटो के नज़दीक उड़ान भरेगा। होराइजन को 9 साल पहले धरती से रवाना किया गया था। होराइजन ने 9 साल में अरबों किलोमीटर का सफ़र तय किया है। अब वो प्लूटो से सिर्फ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। होराइजन प्लूटो के फोटो लेगा और आंकड़े भी जुटाएगा। ये फोटो और आंकड़े बुधवार तक धरती पर पहुँचेंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा। नमस्कार भारत, आप रेडियो bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव सुन रहे हैं। साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज ईरान से। तकरीबन 16 दिन की लंबी चर्चा और 3 बार बढ़ी समय सीमा के बाद ईरान परमाणु समझौता अपने आखिरी पड़ाव पर है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और दूसरे बड़े मुल्कों के जरिए लगाए गए आर्थिक और दूसरे प्रतिबंधों को झेल रहे ईरान और विश्व के 6 बड़े देशों के बीच पिछले लगभग 1.5 साल से इस मुद्दे पर बातचीत जारी थी। विश्व की ये 6 शक्तियां हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। जानकार कह रहे हैं कि इन बड़ी ताकतों और ईरान के बीच रिश्तों में बेहतरी की ये सबसे बड़ी उम्मीद है। बीबीसी में अलग अलग जगहों से आई रिपोर्टों के आधार पर तैयार रिपोर्ट सुना रहे हैं अनुराग शर्मा।
वियना में चल रही बातचीत को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के लिए कई दशकों में सबसे अच्छा मौका माना जा रहा है। पश्चिमी देश आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। दोनों ओर से कहा जा रहा है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि कोई भी पक्ष इस बातचीत से इस मौके पर हटकर अपने ऊपर जिद्दी होने का ठप्पा नहीं लगवाना चाहेगा। दो हफ्तों में बातचीत की समय सीमा 3 बार बढ़ाई जा चुकी है, अब सोमवार को ही अंतिम समय सीमा समझा जा रहा है। तो आखिर बात कहां अटकी है? जानकारों के मुताबिक करार की राह में 3 अड़चनें हैं। पहला, ईरान चाहता है कि उस पर 2006 में लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जाएं ताकि वो हथियारों की खरीद फरोख्त कर सके, लेकिन इस मसले पर दूसरा पक्ष बटा हुआ है। पश्चिमी देश क्षेत्रीय तनाव को ध्यान में रखते हुए ये पाबंदी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन रूस और चीन ईरान के समर्थन में हैं। रूस की नज़र $8 अरब के ईरानी हथियार बाजार पर है। वहीं अमरीका चाहता है कि ईरान सीरिया में बशर अल असद और लेबनान में हिजबुल्ला को हथियार न दे। हथियारों की पाबंदी का मुद्दा इस करार को अमरीकी कांग्रेस में रोक सकता है, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस वियना में होने वाली किसी भी समझौते की समीक्षा करेगी। दूसरी अड़चन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के निरीक्षण से जुड़ी है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि जरूरी हो तो ईरान अपने सैन्य ठिकानों को भी निरीक्षण के लिए खोले, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं दिखता। तीसरी अड़चन है सेंट्रीफ्यूज से जुड़ी। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए ज्यादा सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशनल रखना चाहता है, लेकिन अमरीका इसके लिए राजी नहीं है। लेकिन अगर प्रतिबंध हटते हैं तो ईरान को भी बड़ा फायदा होगा। अभी ईरान के यूरोपीय देशों को तेल बेचने पर प्रतिबंध है, तेल आधारित उसकी अर्थव्यवस्था अब मुश्किल में है। हालांकि ईरान का मानना है कि प्रतिबंध हटते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इससे तेल की सप्लाई बढ़ेगी और भारत जैसे देशों को फायदा मुमकिन है जो तेल का बड़े पैमाने पर आयात करते हैं।
ईरान के मामले पर रिपोर्ट सुना रहे थे अनुराग शर्मा। इस मामले पर मैंने बात की अमेरिका के डेलावर यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर मुक्तदर खान से। मैंने उनसे पूछा कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी अभी भी बड़े मुद्दे सुलझाने की बात कर रहे हैं, उधर जर्मनी के सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि डील हो सकती है, लेकिन ईरान को आखिरी कदम उठाना होगा। ये भी कहा जा रहा कि बातचीत अंतिम चरण में है, तो क्या है असल बात?
इस तरह के स्टेटमेंट्स ना सिर्फ जर्मनी और अमेरिका से आ रहे हैं, खुद रूहानी भी, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस तरह के स्टेटमेंट्स किया है। बेसिकली दोनों साइड के जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अगर डील नहीं होती तो दूसरे साइड को ब्लेम करने के लिए। अभी तक तो जो मुद्दा अटका हुआ है वो आर्म्स एम्बार्गो का है। ईरान के ऊपर कन्वेंशनल आर्म्स एम्बार्गो भी है, मतलब वो बंदूकें, हथियार, तोपें वगैरह भी नहीं खरीद सकते इंटरनेशनल मार्केट पे, ना कोई उनको बेच सकता है। तो ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि जो सैंक्शंस लिफ्ट किए जाएंगे वो सैंक्शंस शुड आल्सो इंक्लूड आर्म्स एम्बार्गो।
ये बताएं मुक्तदर खान साहब कि वो जो न्यूक्लियर के मुद्दे थे उसमें तकरीबन आपकी कोई खबर है कि किस तरह के एग्रीमेंट उसमें हो सकते हैं या हुए हैं?
बेसिकली ये है कि जो एक्स्ट्रा जो इन्होंने यूरेनियम वगैरह स्टॉक फाइल किया है वो वापस रशिया को चला जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग होगी, लेवल ऑफ प्योरिटी जो है वो बहुत ही कम रहेंगी, तकरीबन 3.5% जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए ईरान के मेडिकल और दूसरे रिसर्च के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी अगर वो जनरेट करना चाहता है उसके लिए। तो ये जो बेसिकली जो डील है ये ईरान की जो टेक्निकल कैपेसिटी है उसको 10 साल तक फ्रीज कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान परमानेंटली एक न्यूक्लियर कैपेसिटी नेशन नहीं बन सकेगा, 10 साल में शायद वो फिर ये सारी चीजें निगोशिएट करना पड़ेगा।
मुक्तदर खान साहब, मैं दो सवाल इसमें जानना चाहूंगा। एक तो इसराइली लॉबी और साथ साथ सऊदी लॉबी पर किस तरह से लगाम लगाई गई, क्योंकि जाहिर है कि दोनों इसके खिलाफ थे, शिया ईरान के खिलाफ, सुन्नी सऊदी अरब। और दूसरी बात है कि इस पूरे डील से जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है मध्य पूर्व का वो कैसे तब्दील होगा?
देखिए, एक तो एक के अमेरिका में भी एक छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जो चाहती है कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अगर आप अमेरिका में नेशनल पब्लिक रेडियो पे सुने या दूसरे अदर डिस्कशंस फोरम्स पे सुने तो वो एक बात बार बार दोहराते हैं कि अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रो अमेरिका पॉपुलेशन है वो ईरान में है, और अमेरिका के जो सबसे करीबी मुल्क हैं मुस्लिम दुनिया में, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये मुल्कों में सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकनिज्म है। सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकनिज्म है, आपको याद होगा कि 9/11 के जो 19 परपेट्रेटर थे उसमें से 15 तो सऊदी अरब से आए थे। तो ये बातें इस तरह से भी कर रहे हैं कि मतलब सऊदी अरेबिया के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात है जिसकी वजह से उसको मजबूरन ईरान के साथ تعلقات خراب رکھنا پڑ رہا ہے, مثال کے طور پہ یمن کے مسئلے پر. اور یہ جو اسرائیل کا مسئلہ ہے, اب یہاں پہ ایک طرح سے کنسنسس بڑھتے جا رہا ہے کہ ایران کے مسئلے پہ نیتن یاہو کریڈیبل سورس نہیں ہے. 20 سال پہلے اسرائیلی لیڈرز کے آپ سٹیٹمنٹ سنیں ایران کے اوپر, اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ کل ایران میں بم تیار ہو جائے گا. تو 20 سال سے وہ کہے جا رہے ہیں کہ ایران کا نیوکلیئر ویپن کل آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, کل آ رہا ہے.
اور جیو پولیٹیکل سینیریو کیسے تبدیل ہوگا پورے مدھیہ پورو کا؟
دیکھیے, آپ آئیسس کے خلاف دیکھ لیں, دنیا میں صرف 2 میجر ملک آئیسس سے ڈائریکٹلی لڑ رہے ہیں, ہوا سے امریکہ اور زمین پر ایران. باقی کے دوسرے ملک یا تو پیسے دے رہے ہیں یا لپ سروس دے رہے ہیں, انکلوڈنگ حزب اللہ. تو ایک اسٹریٹجک الائنس تو آلریڈی ہے انسٹیٹڈ امریکہ اور ایران کے بیچ میں آئیسس کے خلاف. دوسری چیز یہ ہے کہ جو عرب ملکوں میں کرائسس ہے, اب عرب ملک پہلے سٹیبل ہوا کرتے تھے, مثال کے طور پہ ایجپٹ وغیرہ, وہ خود اب سینٹر آف کرائسس بن چکے ہیں. تو مڈل ایسٹ میں جو اونلی کنٹریز جو سٹیبل ہیں وہ نان عرب کنٹریز ہیں, وہ ترکی ہے اور وہ ایران ہے. امریکہ کے تو ترکی کے ساتھ ایٹ لیسٹ نیٹو کے تھرو الائنسز ہیں, اور اگر وہ ایران کے ساتھ ریپروچمنٹ ہو جاتا ہے تو امریکہ یہ جو عرب فکلنس ہے فورن پالیسی میں, اس کے بغیر وہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی لا سکتا ہے, کیونکہ جو میجر پاورز ہے ایران, ترکی اور اسرائیل, وہ سب امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہو جائیں گے یہ سو کالڈ اسلامک ایکسٹریمزم کے خلاف. تو سعودی عربیہ یا تو ان کے ساتھ بینڈ ویگننگ کرے یا نہ کوآپریٹ کرے. اگر وہ نہ کوآپریٹ کرتا تو اسی کے لیے خطرے بڑھ جاتے ہیں, اگر وہ کوآپریٹ کرتا ہے تو ریجن بہتر اور سٹیبلائز ہو سکتا ہے.
امریکہ کے ڈیلاور یونیورسٹی کے انتراشٹریہ معاملوں کے پروفیسر مقتدر خان بتا رہے تھے کہ ایران کے ساتھ پرمانو سمجھوتے سے کیا کیا بدلاؤ ہو سکتے ہیں مدھیہ پورو میں. اور اب بات گریس کی. گریس میں ابھرے قرض سنکٹ اور اس کے بعد پیش کیے گئے نئے پرستاؤ کو لے کر برسلز میں بات چیت جاری ہے. گریس کو خطرہ ہے کہ اس کے بینکوں میں مدرا کی قلت نہ پیدا ہو جائے, وہاں بینک کئی دنوں بند رہے. دوسری طرف دیندار شرطوں کو ماننے کی بات پر اڑے ہیں. ایک رپورٹ کے ساتھ انوراگ شرما.
بیلجیم کے برسلز میں چل رہی بات چیت کے دوران گریس کے سامنے یورو زون سے استھائی روپ سے نکلنے کا وکلپ بھی رکھا گیا ہے. ایسا تب ہوگا جب گریس کو راحت پیکج پر سہمتی نہیں بنے. یہ وکلپ 4 پنوں کے اس مسودے میں ہے جو یورو زون کے وت منتریوں کی بات چیت سے نکلا ہے. اس پرستاؤ میں گریس کے سامنے کئی سجھاؤ رکھے گئے ہیں, جیسے کہ گریس سرکار آرتھک سدھاروں کے پرستاؤ پر 15 جولائی تک سنسد کی مہر لگوا لے, پینشن اور شرم کھیتر میں ویاپک سدھار کیے جائیں, انتراشٹری قرض داتا ایتھنس میں موجود رہ کر یہ دیکھیں کہ جو ڈرافٹ قانون تیار ہوگا وہ کیسا ہوگا. اس کے علاوہ 50 ارب یورو کی سمپتی کو کسی باہری فنڈ میں رکھ دیا جائے جس کا آخر میں نجی کرن ہو. اس سے پہلے بات چیت کے لیے پہنچے فرانس کے راشٹرپتی فرانسوا اولاند نے کہا کہ یوروپ کا بھوشیہ داؤں پر لگا ہوا ہے. ان کا کہنا تھا, صرف گریس کی سمسیائیں سلجھانے کی بات نہیں ہے, بات یہ بھی ہے کہ یوروپ کی اوھارنا اور یوروپ کے جو ہت ہیں انہیں اسپشٹ کیا جائے. فرانس کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا جب تک کہ گریس یورو زون میں رہنے اور یوروپ کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے. فرانسوا اولاند کے شبد. فرانس کا رخ لچیلا دکھتا ہے لیکن جرمنی کو گریس پر بھروسہ نہیں ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ گریس پر بھروسہ ٹوٹ چکا ہے. انہوں نے کہا, حالات بہت مشکل ہیں. ایک اور تو گریس آرتھک کٹھنائی میں ہے جو بیتے کچھ مہینوں میں بگڑی ہے, دوسری اور سب سے اہم بات ٹوٹ گئی ہے جو ہے وشواس اور وشوسنیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات چیت مشکل ہے اور کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں ہوگا. اینگلا مرکل کے شبد. اصل میں گریس کے آرتھک حالات بہت برے ہیں, بینکوں میں پیسہ نہیں ہے اور سرکار کو کرمچاریوں کو ویتن دینا ہے. ایسے میں گریس کے بینکوں کو پیسہ چاہیے جو یورپی سینٹرل بینک تب تک دینے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ راحت پیکج پر سہمتی نہیں بن جاتی. ظاہر ہے یورو زون کے وت منتریوں کا پرستاؤ یوں تو صرف 4 پنوں کا ہے, لیکن اسے منظور کرنا گریس کے لیے بہت مشکل ہوگا.
اور اب بات ومبلڈن کی. بھارت کے لیے ومبلڈن کا انتم دن بھی شاندار رہا. کلینڈر پیس نے سوئس کھلاڑی مارٹینا ہنگس کے ساتھ مکس ڈبلز کا خطاب بھی جیت لیا. مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب ایک دن پہلے ثانیہ مرزا نے مارٹینا ہنگس کے ساتھ ہی ومبلڈن کے مہیلا ڈبلز مقابلہ جیتا تھا. اس کا خطاب ومبلڈن میں بھارتی کھلاڑیوں کی جیت پر لندن سے اپورو کرشن.
بھارت کے انوبھوی کھلاڑی لینڈر پیس نے کل ومبلڈن میں اپنا 16واں گرینڈ سلیم خطاب حاصل کیا. कल पेस ने अपनी जोड़ीदार स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस के साथ सेंटर कोर्ट पर जबरदस्त खेल दिखाते हुए लगभग एक तरफा मुकाबले में विंबलडन का मिक्स्ड डबल्स खिताब हासिल किया। सातवीं सीट की पेस हिंगिस की जोड़ी ने पांचवीं सीट के खिलाड़ियों ऑस्ट्रिया की अलेक्जेंडर पेया और हंगरी की टाइमर बेवोस को मात्र 40 मिनट में सीधे सेटों में 6-1 6-1 से पराजित किया। पेस हिंगिस की जोड़ी का ये इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। लिएंडर ने कल अपनी जीत के बाद कहा, ये जीत उनके लिए खास है।
I mean, it's hard to really say which one is the best one out of all of them, but coming out and
ये बता पाना मुश्किल है कि सबसे अच्छी जीत कौन थी, मगर उस कोर्ट पर जीतना जिसका सपना देखकर हम बड़े हुए हैं, वहाँ बिना कोई सेट हारे जीतना सचमुच खास है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन हमारे लिए नया था, मगर विंबलडन में दोबारा जीतना सचमुच खास है। लिएंडर पेस के शब्द। विंबलडन में लिएंडर का ये चौथा और हिंगिस का तीसरा मिक्स्ड डबल्स टाइटल है। अब तक 33 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल चुके लिएंडर ने कल अपना 16वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जिनमें 8 डबल्स और 8 मिक्स्ड डबल्स खिताब शामिल हैं।
और वापस चलते हैं भारत की तरफ। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल में हुए अपराध की सीबीआई जांच आज से शुरू होने वाली है, लेकिन इस बीच पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल समेत दूसरी परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई अपनी जाँच का दायरा बढ़ाए और उसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल करे। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल मामले की सीबीआई जांच के आदेश के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने इन मामलों में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को भी लपेटा।
अगर ईमानदारी से सीबीआई ने जाँच चालू कर दी तो ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी व्यापम का एक घोटाला हुआ जो दबा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद जो लीडर था शर्मा, बीबी शर्मा, जो आज संगठन मंत्री है छत्तीसगढ़ में, वो ही सारी लिस्ट लेके आता था और भर्तियां कराता था, नौकरियां दिलवाता था। उससे भी आज तक जांच पड़ताल नहीं की गई। मेरे पास कुछ प्रमाण गुजरात के भी आ रहे हैं, कुछ प्रमाण राजस्थान के भी आ रहे हैं। उसकी जब तक मेरा रिसर्च पूरा नहीं हो जाएगा तब मैं उजागर नहीं कर सकता।
छत्तीसगढ़ में मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ अधिकांश सरकारी नौकरियों के लिए हुई परीक्षाओं के मामले विवादों में रहे हैं। हालत यह है कि राज्य में 2003 में हुई राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा से लेकर पिछले साल तक हुई परीक्षा में गड़बड़ी के कम से कम 500 मामले अदालतों में लंबित हैं। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में पीएमटी परीक्षा में फर्जी तरीके से हुई भर्ती के मामलों को उठाते हुए कहा है कि सीबीआई को छत्तीसगढ़ के मामले की भी जाँच करनी चाहिए। विधायक और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल का कहना है कि इस मामले में वे केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए एक पत्र लिख रहे हैं।
जो तखतपुर में जिन्होंने सब व्यवस्था किया था डॉक्टर बीबी साहू, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। परीक्षा देने वाले बच्चों को तो पकड़ लिया आप, लेकिन पेपर लीक कौन किया इसके बारे में कोई जानकारी आई नहीं है। इन्होंने सीआईडी दे दिया था जांच के लिए और सीआईडी मुख्यमंत्री के दबाव के बाद से जांच करना बंद कर दिया। जैसे मध्य प्रदेश में बड़े लोगों के हाथ हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी बड़े लोगों के हाथ हैं।
भूपेश बघेल ने नागरिक आपूर्ति निगम के दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि इस मामले की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
C11 और D15 आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये दोनों पेपर ACB के द्वारा न्यायालय में चालान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके मंत्री इनको छुटला सकते हैं क्या?
लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि सारे आरोप राजनीतिक हैं।
के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो वो दो साल से यही करेंगे, पांच साल भी यही करते रहेंगे, तो ये कोई इशू जिसके बारे में विधानसभा में सारी बात हो गई है, सारी चर्चा हो गई है। और आप आज जिस स्टेज में है, चलान पेश हो चुका है और विभाग ने पूरी इसमें कार्रवाई की है, तो ये तो एंटी करप्शन ब्यूरो का काम है, उसको जांच करना। जांच करने के बाद जो लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ मामला चल रहा है।
मुख्यमंत्री रमन सिंह भले आरोपों से इनकार करें, लेकिन यह तो तय है कि कांग्रेस पार्टी इस महीने शुरू होने वाली राज्य के विधानसभा के सत्र में सरकार को इस मुद्दे पर भी घेरेगी। और कांग्रेस नेताओं की माने तो छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी का मामला भी ऊपरी अदालतों में जा सकता है। आलोक पुतुल, छत्तीसगढ़।
सदियों से गूंजती आवाजें।
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत ना होता।
मैं तो हूँ विश्वास में,
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा सुनिए इस रविवार से दिन भर में।
और अब सुनिए अनुराग शर्मा से कि अखबार क्या कह रहे हैं।
जी फैसल, आज भी ज्यादातर अखबारों ने बारिश से हो रही दिक्कतों को प्रमुखता से छापा है। अमर उजाला ने शीर्षक दिया है उत्तर भारत में मुश्किलों की बारिश, 35 लोगों की मौत। अखबार लिखता है कि बारिश की वजह से केदारनाथ और अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है कि इस हफ्ते और ज्यादा बारिश को रहें तैयार। जनसत्ता ने शीर्षक दिया है भारी बारिश,
दिल्ली में मौसम ठंडा रहेगा।
हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली में मौसम ठंडा रहेगा, इतने दिनों से हम गर्मी झेल रहे थे यहाँ पर, तो अब जरूर उम्मीद है ऐसी। जनसत्ता ने शीर्षक दिया है भारी बारिश ने सबको किया बदहाल। इसके अलावा मुंबई हमले के कथित मास्टरमाइंड जिन्हें भारत कहता है जकीउर रहमान लखवी, उनकी आवाज़ को सैंपल के सैंपल को लेकर भी खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर ने लिखा है लखवी के वॉइस सैंपल पर पलटा पाकिस्तान। दैनिक भास्कर लिखता है कि दोनों देशों के पीएम की भेंट में इस बात पर सहमति बनी थी कि पाकिस्तान लखवी के वॉइस सैंपल की लखवी का वॉइस सैंपल भारत को देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है लखवी पर पाक का यू टर्न। हिंदुस्तान ने लिखा है शरीफ की शराफत बेनकाब। विंबलडन में सुमित नागल और पेस की डबल्स जीत और हरारे में भारत की जिम्बाब्वे पर जीत की खबर भी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है विंबलडन में भारत को तिहरी सफलता। दैनिक जागरण ने लिखा है लंदन से हरारे तक जीत ही जीत। अंग्रेजी अखबारों का रुख करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जल्द ही ऑनलाइन होगा। आपको ये याद होगा कि पासपोर्ट बनवाने में अक्सर पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से देरी होती है, कई बार दो दो तीन तीन महीने तक मामला खींच जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है कि ऐसा वेरिफिकेशन क्योंकि ऑनलाइन होगा, इससे प्रोसेसिंग का समय 20 दिन से घटकर एक हफ्ते रह जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी दिलचस्प खबर छापी है फैसल अखबारों में कि ये खबर है कि हरियाणा में घर से भागकर शादी करने वाले और सरकारी सुरक्षा में रहने वाले दंपतियों की संख्या 4 साल में 366 से 1465 हो गई है।
मतलब लोग भाग के काफ़ी शादी कर रहे हैं या सुरक्षा ज़्यादा मांग रहे हैं?
सुरक्षा ज़्यादा मांग रहे हैं, भाग के शादी तो पहले भी करते थे, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले
और चूंकि भाग के शादी करने से सुरक्षा मांगनी पड़ रही।
जी बिल्कुल, एक ही वजह यह है क्योंकि हाईकोर्ट ने ये रूल्स फॉर्मुलेट किए, हाईकोर्ट ने ये रूल्स बनाए, नए नियम तैयार किए, उसके बाद ये बात आई।
तो जातिवाद का बड़ा वहाँ मामला है, तो वो भी काफ़ी मामला रहता है लोग जाहिर है।
जी बिल्कुल। और एक बात हिंदुस्तान टाइम्स की करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इफ्तार पार्टी में गले मिलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग की तस्वीर छापी है। शीर्षक है जादू की झप्पी। इफ्तार की एक और खबर भारत
इफ्तार की झप्पी नहीं जादू की
हाँ बिल्कुल इफ्तार की एक और खबर भारत प्रशासित कश्मीर से है जो द हिंदू ने छापी है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, उमर फारूक और यासीन मलिक 8 साल बाद साथ आ गए हैं। ये सब हुआ है नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं कि आज की किन किन बड़ी खबरों पर नजर रहेगी हमारी।
सोमवार को जिन खबरों पर नजर रहेगी उनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य एशिया यात्रा के बाद वापसी अहम है। इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आज किसी करार का ऐलान हो सकता है। आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की समय सीमा खत्म हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ का कहना है कि बातचीत सोमवार से आगे नहीं बढ़ेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के 5 देशों और रूस की यात्रा के बाद आज भारत लौटेंगे। अभी मोदी ताजिकिस्तान के दुशानबे में हैं, जहां वो राष्ट्रपति एमोमाली रहमान से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दिल्ली में इफ्तार पार्टी की मेजबानी कर रही हैं। इस पार्टी में विपक्ष के नेता जुटकर 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के लिए रणनीति बना सकते हैं। अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस की सुनवाई आज बॉम्बे हाईकोर्ट में हो सकती है। सलमान ने निचली अदालत से मिली 5 साल की सजा के खिलाफ अपील की है। मिस्र की राजधानी काहिरा में इटली के विदेश मंत्री मिस्र के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। काहिरा में पिछले दिनों इटली के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था।
और अब एक बार फिर से चलते हैं लंदन विंबलडन की खबरों के लिए, जहां से अपूर्व कृष्ण है।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की इस विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच एक बार फिर विंबलडन विजेता बन गए हैं। अपने खिताब की रक्षा करने उतरे जोकोविच ने कल सेंटर कोर्ट पर चले मैच में रोजर फेडरर के 8 बार विंबलडन जीतकर कीर्तिमान बनाने के प्रयास पर एक बार फिर पानी फेर दिया। 2 घंटे 56 मिनट तक 4 सेटों में चला मैच जोकोविच ने 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 से अपने नाम किया। ये उनका 3रा विंबलडन और 9वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था, मगर फ्रेंच ओपन फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पर कल विंबलडन में जोकोविच ने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की। उन्होंने पुरस्कार समारोह में कहा,
For this particular match, as you work all your life, you wake up every day and you work.
इस मैच के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, कुछ चीजें बार बार करते हैं। आप अपने आप को सेंटर कोर्ट पर इस ट्रॉफी को हाथ में लिए खड़े देखने का ख्याल करते रहते हैं। ये बड़ा रोमांचकारी अनुभव है। विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच के शब्द, जिन्हें इस जीत के लिए 19 लाख पाउंड यानी लगभग 19 करोड़ रुपए के बराबर का इनाम मिला। जोकोविच ने पिछले साल भी फाइनल में फेडरर को हराया था। इस जीत के साथ ही वे 2007 में फेडरर के बाद अपने खिताब की रक्षा करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं रोजर फेडरर को लगातार दूसरे साल फाइनल में निराशा झेलनी पड़ी। 7 बार के विंबलडन विजेता फेडरर का यह 10वां विंबलडन फाइनल था। 8वीं जीत से वे नया इतिहास रच सकते थे। उन्होंने 2012 में अमेरिका के पीट सैम्परास के 7 विंबलडन खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, पर 17 ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर इसके बाद कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए हैं। 33 वर्षीय फेडरर की जीत उनके नाम एक और रिकॉर्ड बना सकती थी, सबसे अधिक उम्र में विंबलडन जीतने का रिकॉर्ड। मैच के बाद उन्होंने कहा कि 8वां विंबलडन जीतने की उनकी कोशिश जारी रहेगी।
बेशक
मैं जीतना चाहता था, मगर नोवाक बहुत अच्छा खेले, मगर अंत में मुझे यहाँ खेलकर मजा आया, तो उम्मीद है कि मैं फिर आऊंगा। रोजर फेडरर के शब्द। भारत के लिए इस बार विंबलडन काफी कामयाब रहा। लिएंडर से पहले सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ ही इस बार का महिला डबल्स खिताब जीता था। सानिया और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी दुनिया की पहले नंबर की महिला डबल्स जोड़ी है।
I said to Martina, I mean, we had goosebumps, the energy on the court, I mean, we were getting a standing ovation.
हमारे रोएं खड़े हो गए थे। कोर्ट पर जैसी ऊर्जा थी, लोग खड़े होकर अभिवादन कर रहे थे, वो अविश्वसनीय था। मैंने मार्टिना से कहा, इसी क्षण के लिए हम खेला करते हैं, इस ऊर्जा के लिए। हमारे लिए ये सब कुछ है और दुनिया का पहले नंबर का खिलाड़ी होना हम दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। सानिया मिर्जा के शब्द। कुल मिलाकर इस साल विंबलडन में चाहे पुरुषों के मुकाबले हों या महिलाओं के, अनुभवी और शीर्ष वरीयता वाले खिलाड़ियों का पलड़ा भारी रहा। तो इस साल विंबलडन के सफर में इतना ही। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और प्रोग्राम के अंत में एक बार फिर से सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आज किसी समझौते का ऐलान हो सकता है। ऑस्ट्रिया के वियना में ईरान और 6 बड़ी ताकतों के प्रतिनिधियों की बातचीत जारी है। यूरोजोन के नेता ग्रीस के कर्ज संकट को लेकर अब भी बातचीत कर रहे हैं। कोशिश है ऐसे समझौते पर पहुंचने की जिससे ग्रीस यूरो को अपनी मुद्रा रख सके और उसके पास पैसा खत्म ना हो। इराक की राजधानी बगदाद में हुए 2 कार बम धमाकों और 1 आत्मघाती हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। धमाकों में 80 लोग जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि खोस्त प्रांत में हुए आत्मघाती कार्बम हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। ये हमला एक अमरीकी सैन्य ठिकाने के नज़दीक हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर ने एक चौकी पर कार में विस्फोट कर दिया। इसराइल में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक इसराइली अधिकारी को एक फलस्तीनी लड़के की हत्या करते दिखाया गया है। ये लड़का इस अधिकारी की कार पर पत्थर फेंक कर भाग रहा था। नासा के इंजीनियरों ने बीबीसी को बताया है कि होराइजन अंतरिक्षयान मंगलवार को प्लूटो के नज़दीक उड़ान भरेगा। बीबीसी समाचार।
कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था देवाशीष कुमार। 1 घंटे बाद फिर मुलाकात होगी आपसे विश्व भारती में 8 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम को नमस्कार।